नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि जोशी
और मैं नरेंद्र तिवारी
लेकर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम जब चले शहर की ओर।
अंजलि, पहाड़ी इलाकों के गांवों में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए तुम्हें नहीं लगता कि खेती के अलावा आमदनी का कुछ और जरिया भी उनके पास होना चाहिए?
हाँ नरेंद्र, क्योंकि आत्मनिर्भर महिला हर हालात का डटकर मुकाबला कर सकती है।
सही कहा अंजलि। और दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियोसिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके जरिए हम अपने प्रवासी दोस्तों की जरूरत की हर जानकारी उन तक पहुंचाते आ रहे हैं।
और इन जानकारियों के संबंध में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमसे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9197176782।
और आइए अब सुनते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना उमेश मधु को चंदर और कल्पना के बारे में बताता है। मधु कल्पना और चंदर के रिश्ते पर शक करती है। मीरा मधु को समझाती है कि वो बेकार में चिंता कर रही है, साथ ही वो उसे सलाह देती है कि अपना ध्यान बटाने के लिए उसे कुछ काम करना चाहिए, जिसके लिए मीरा मधु को नीलम दीदी से मिलने के लिए कहती है। उधर शहर में चंदर पहली बार ढाबे पर खाना बनाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
भैया, एक एसटीडी कॉल करनी है।
हाँ हाँ, कर लो।
हाँ
ये नंबर अस्तित्व में नहीं है, कृपया नंबर जांच लें और दोबारा कोशिश करें।
ये गांव का नंबर भी कभी लगता है कभी नहीं लगता। चलो कल्पना से बात कर लेता हूँ। हेलो कल्पना।
चंदर, हाँ बोलो।
कैसी हो?
मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम कल क्या कर रही हो?
ज्यादा कुछ नहीं, बस कपड़ों का एक ऑर्डर है, उसी को खत्म करने में लगी। क्यों?
क्या तुम कल मेरे साथ घूमने चल सकती हो?
घूमने?
हाँ।
चंदर, मैं ऐसे तुम्हारे साथ घूमने कैसे जा सकती हूँ? मेरी और भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, तुम्हारी भी गाँव में पत्नी है, उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा?
अगर मधु की वजह से तुम परेशान हो तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, उसे तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है।
ये क्या बात हो गई चंदर, तुम मेरे घर आते हो, फोन करते हो, अगर ये सब बातें तुम अपनी पत्नी से छुपा रहे हो तो इसका मतलब कुछ और निकलता है ना?
नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस शहर देखना चाहता था, सोचा कि तुम साथ चलो तो।
नहीं नहीं चंदर, मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं आ सकती, तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ अच्छी जगहों के बारे में बता सकती हूँ।
लो, मैं साथ चलने के लिए कह रहा हूँ और तुम जगह बता रही हो।
चंदर, मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती, मुझे और भी काम है।
मगर कल्पना, हेलो हेलो, अरे इसने फोन क्यों रख दिया?
अरे सपना, थोड़ा राई कम डाला कर, अचार बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है।
जी नीलम दीदी।
जी नमस्ते।
नमस्ते
जी, आप नीलम दीदी हैं?
हाँ बोलिए।
जी मेरा नाम मधु है, मुझे मीरा दीदी ने आपके बारे में बताया है।
ओ मीरा ने, आओ आओ बैठो, कुछ काम था क्या?
हाँ दीदी, वो असल में मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। और सुना है आप औरतों को घर पर अचार चटनी मुरब्बा वगैरह बनाने का काम देती हैं?
हाँ देती तो हूँ, पर क्या तुम्हें इनमें से कुछ बनाना आता है?
नहीं आता तो नहीं है, पर मैं सीख लूँगी।
दरअसल मधु, मेरे यहाँ से ये सब चीजें तैयार होकर शहर में बिकने जाती हैं, इसलिए इन्हें तैयार करने से लेकर पैकिंग तक का काम बड़ी ही सफाई से किया जाता है, और इसके लिए हमारे यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
प्रशिक्षण?
हाँ, और इत्तेफाक से वो प्रशिक्षण देने वाले लोग परसों ही देहरादून से यहाँ आ रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी वो प्रशिक्षण ले सकती हो, और इसके बाद मैं तुम्हें घर के लिए काम दे दूंगी।
लेकिन दीदी, इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे ना, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है।
अरे उसकी फिक्र तुम क्यों करती हो, बस तुम परसों यहाँ आ जाना।
जी दीदी।
सुनिए, ये दवाइयाँ रख कर जा रही हूँ, खा लेना।
सुनो मीरा।
हाँ।
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
हाँ बोलिए।
मीरा, मेरी तबीयत अब ठीक होने लगी है।
जी।
तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर से ऋषिकेश चला जाऊँ और वहीं कोई नौकरी कर लूँ।
ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन।
क्या हुआ?
मैं कह रही थी अभी चंदर भी घर पे नहीं है और मेरी डिलीवरी का समय भी पास आ रहा है, ऐसे में अगर आप भी नहीं होंगे तो।
वो बात भी सही है, तुम्हारी डिलीवरी तक तो मैं रुक ही सकता हूँ, और ऐसे भी कोई जल्दी नहीं है।
ठीक है, आप अभी वो दवाई ले लीजिए, मैं जरा रसोई होकर आती हूँ।
अरे मधु, तू कब आई?
अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ देखा चूल्हे पर दाल चढ़ी है और आसपास कोई नहीं, इसलिए यहाँ बैठ गई।
ये क्या, तेरे चेहरे पर अब भी उदासी क्यों?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
देख मधु, तूने अपनी तरफ से बात को सुलझाने की पूरी कोशिश की है। तूने चिट्ठी तो दे दी है ना उमेश को?
हाँ दे दी, लेकिन अब उनको चिट्ठी कब मिलेगी ये पता नहीं। और अगर कहीं मैं बेवजह शक कर रही हूँ तो चिट्ठी से बात और ना बिगड़ जाए, इस बात का डर सता रहा है मुझे।
अब जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में परेशान होकर किसी का भला नहीं होने वाला। अब ये सब बात छोड़, ये पता नीलम दीदी ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि वो मुझे काम तो दे सकती हैं, लेकिन उससे पहले मुझे उनके वहाँ जाकर प्रशिक्षण लेना होगा।
हाँ तो क्या हुआ, ले लेना।
लेकिन क्या माजी इसके लिए राजी होंगी?
अरे तू भी ना बेकार की चिंता करती है, चल अभी माजी से बात कर लेते हैं।
अभी?
हाँ अभी, तू चल मेरे साथ।
देख मधु, मुझे मत समझा, ये सब तेरे काम न करने के बहाने हैं। सुबह से घर से निकल जाएगी और शाम तक लौटेगी।
पर माजी, सिर्फ एक दो दिन ही की तो बात है।
हाँ माजी, बस एक दो दिन की ही बात है, उसके बाद तो सारा काम घर पर ही कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल ठंड का मौसम है, खेतों पर भी उतना काम नहीं है।
हाँ ये तो है।
और माजी, जब मधु काम करेगी तो पैसे तो घर पे ही आएंगे ना, घर में चार पैसे आएंगे, सहारा लगेगा, आमदनी बढ़ेगी।
हाँ ये बात भी ठीक है।
माजी आगे की सोचिए, कितना फायदा होगा हमें इससे।
ठीक है मीरा, जब तू कह रही है तो मान लेती हूँ, लेकिन मुझसे इसके लिए किसी पैसे की उम्मीद ना करना।
नहीं नहीं माजी, मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, बस आप मुझे इस प्रशिक्षण के लिए हाँ कर दीजिए।
तो ठीक है, लेकिन जो भी पैसे आएंगे उसका हिसाब किताब होना चाहिए मेरे पास।
जी माजी।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर। नरेन, वैसे मैं आज बहुत खुश हूँ।
क्यों भाई, ऐसी क्या बात है?
अरे देखो ना, हमारी मधु ने आत्मनिर्भरता की सीढ़ी की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है।
बात तो तुम्हारी सही है अंजलि, लेकिन तुम्हें क्या लगता है लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?
नरेन, यही सब हमने लोगों से पूछा कि क्या औरतों को पैसों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए या घर के पुरुषों पर निर्भर होना चाहिए।
तो चलो सुनते हैं लोगों ने इस सवाल के क्या क्या जवाब दिए।
अगर हम खुद कमा रहे हैं तो हम अपना पैसा खुद ही खर्च कर सकते हैं, इतनी बार मतलब हर चीज़ के लिए उनसे पैसा नहीं ले सकते। जितनी बार पैसा लेंगे उतनी बार फिर बातें सुननी पड़ेंगी या सवाल पूछेंगे, उतने सवाल पूछेंगे हमसे कि तुम किस लिए पैसा ले रहे हो या इतनी बार तुमने पैसे लिए, कहाँ खर्च किए, क्या चीज़ ली, उतनी बातें पूछते हैं। अगर हम खुद कमा रहे होते हैं तो हम इतने सवालों के जवाब नहीं देने पड़ते और हम अपने मतलब कोई भी चीज़ लेनी हो तो खुद ही ले सकते हैं।
औरतों को जो है अपना पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि आजकल समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि औरत भी मतलब कमा सकती है, खा सकती है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है। आज मर से कंधे मिला के चल रही है, औरतों को पूरा हक है कि मतलब उनको जो है पैसा कमाने का पूरा हक है।
हम अपने बलबूते पर रहना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आदमी की गुलामी करें, क्योंकि आदमी अपने पैसे के घमंड में रहते हैं। आज कहीं भी जाने के लिए हमें पैसा मांगना पड़ता है, वो बोलते हैं इसे कमाने में टाइम नहीं लगता क्या, इसलिए लेडीज़ को अपनी बलबूते पर खड़ा होना चाहिए।
तो दोस्तों ये तो थे लोगों के विचार, और इन विचारों को जानने के लिए हम अपने सामुदायिक संवाददाताओं का धन्यवाद करते हैं।
और दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जिसकी एक महिला सदस्य सफलतापूर्वक अपना कुटीर उद्योग चला रही हैं। आइए सुनते हैं उनकी आत्मनिर्भरता की कहानी हमारे अगले सेगमेंट कुछ विश्वास में।
मेरा नाम काजल जोशी है और हमारा घर अगस्त मुनि में है। मेरी मम्मी जो यहाँ पे फल संरक्षण कुटीर उद्योग चलाती हैं और हम अपनी फैमिली उनके साथ व्यवसाय में पूरा हाथ बटाते हैं।
तो आपने ये कुटीर उद्योग की शुरुआत कब की?
हमने ये 2001 में खोला। हमने देखा यहाँ पे फल फ्रूट बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे लोग उनका उपयोग करना नहीं जानते, तो पापा ने मम्मी से कहा कि हमें यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, हमें यहाँ पे कुटीर उद्योग खोलना चाहिए, जिससे हमें भी रोज़गार मिल जाएगा और दूसरों को भी हम रोज़गार दे सकते हैं आगे चलकर। हमारे कुटीर उद्योग में अचार बनता है, जैम बनता है, चटनी बनती है, जैली बनती है, जूस बनता है और चटनियाँ भी बहुत सारी बनती है, टमाटर टमाटर की बनती है और घेंगर यहाँ पे होता है उसकी भी चटनी बनती है जो कि बहुत टेस्टी होती है और बहुत लाभदायक होती है।
और जब आपने शुरुआत की थी इस उद्योग की तो आपको क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी?
पहले तो लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या है कैसा है, किसी को विश्वास नहीं आया कैसा बना रहे हैं, महंगा लगा रहे हैं, लोगों को ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, इसमें हमारा उतना फ़ायदा नहीं है, तो कोई लोग आने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आई ये चीज़ ऐसे बनती है, ऐसा इसका उपयोग होता है, तो लोग काफ़ी सहयोग करने लगे और काफ़ी लोग आने लगे।
तो इसके अलावा तकनीकी रूप में
हमें पहले दवाइयों का भी उतना ज्ञान नहीं था कि कहाँ से लाएँ क्या करें, वो पहले हमारे पास कोई भी उतना सामान नहीं था, सिर्फ एक मशीन थी जूस निकालने वाली और कुछ भी उतने बर्तन वगैरह सामान वगैरह नहीं था, दवाइयाँ वगैरह नहीं थी हमारे पास, धीरे धीरे ही हमें ये सब मिला।
तो अगर कोई अपना खुद का व्यवसाय करना चाह रहा है तो ऐसे ही कुटीर उद्योग का, तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? कि
पहले तो उसे दवाइयों का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी दवाई किस में पड़ती है, फिर उसे नॉलेज होना चाहिए कि उसे दवाइयाँ कहाँ से मंगवानी है, दूसरा उसे नॉलेज होना चाहिए कि एक फ्रूट से मैं क्या क्या बना सकता हूँ, जैसे आंवले से वो अचार भी बना सकता है, उसका चटनी भी बना सकता है, उसके जूस भी बना सकता है, एक फल से वो कई चीज़ें बना सकता है, उसे इसका नॉलेज होना चाहिए, उसको परीक्षण लेना चाहिए इसके लिए पहले, और फिर जाके उसे खोलना चाहिए, और फिर उसे किसी ऐसे इंसान से संपर्क करना चाहिए जो कि उसे कच्चा माल पर्याप्त करा सके, अगर उसके पास कच्चा माल पर्याप्त होगा तो आसानी से अपना कुटीर उद्योग खोल सकता है, उसे चला सकता है। उसे सावधानियां ये रखनी होंगी कि उसे सीमित मात्रा में फल फ्रूट जमा करने चाहिए, अगर वो अधिक कर लेगा उसे ख्याल रखना चाहिए कि वो सड़े ना, और फिर उसे पर्याप्त बर्तन वगैरह रखने चाहिए जिसपे कि वो अपने स्टोर करने के लिए सामान को रख सके जो कि वो सर्दियों के टाइम पे उसका उपयोग करके उसे बेच सके।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें।
अंजलि, वैसे जब घर में पति है पैसे कमाने के लिए तो महिलाओं को जरूरत ही क्या है काम करने की?
नरेन, इस सवाल के जवाब में एक और सवाल है, वो भी तुमसे। अगर तुम्हारे पिताजी पैसे कमा रहे हैं तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है?
जरूरत तो है ना भाई, क्योंकि आज के समय में एक आदमी के पैसों से तो घर चलता नहीं, और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मैं हर बार तो उनसे पैसे नहीं मांग सकता ना।
बस इसीलिए महिलाएं भी काम करती हैं, क्योंकि उनकी भी कुछ जरूरतें होती हैं, और हर बार पैसे मांगना उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी अभी तुमने खुद ही कहा कि आज के समय में एक आदमी की कमाई से घर नहीं चलता, तो क्यों फंस गए ना अपनी ही बातों में?
हाँ, फंस तो गया।
और बात सिर्फ पैसों की ही नहीं नरेन, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो आत्मसंतुष्टि के लिए भी काम करती हैं।
जैसे?
जैसे मैं।
वैसे तुम्हारी बात में दम है अंजलि, लेकिन इसके लिए तो महिलाओं को अपने पति और परिवार को मनाना पड़ता होगा ना, और ये सब उनके लिए काफी मुश्किल भी होता होगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें?
आओ इस बात को भैजी से पूछते हैं।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार अंजलि, कैसी हो आप?
भैजी मैं बहुत अच्छी हूँ।
और बताइए, आज मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी?
भैजी, अगर कोई महिला काम करना चाहती है गांव में या फिर शहर में, तो उसे प्रोत्साहन देने वाले कम और हौसला तोड़ने वाले ज्यादा होते हैं, ऐसे में वो अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखे?
बहुत अच्छी बात पूछी तुमने, यहाँ मैं अपने ही परिवार की एक महिला का उदाहरण देना चाहूँगा।
जी भैजी।
उसकी भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी, घर के लोग उससे कहते थे कि काम करने की क्या जरूरत है, पति तो बंबई में शानदार कमाई कर रहा है। वो बेचारी बड़े धर्म संकट में फंस गई।
फिर क्या हुआ भैजी?
फिर मैंने उसे बताया कि लोगों की बातों पर मत जाओ, अगर तुमने काम करने का मन बना लिया है तो बेझिझक करो, लेकिन हाँ कोशिश करो कि अपने परिवार का सहयोग मिले।
फिर क्या उसने काम ढूंढ लिया?
ना 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 ना, इतनी आसान थोड़ी थी ये बात, एक महिला के लिए लोगों की बातों से जूझना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि खुद के मन में जो डर है उससे लड़ना।
मतलब भैजी?
मतलब ये कि अगर एक महिला इतने सारे लोगों के खिलाफ जाकर काम करने जा रही हो तो उसके मन में एक डर हावी होने लगता है, काम में असफल होने का डर, कि अगर वो काम में सफल न हो पाई तो खुद को क्या जवाब देगी।
तो भैजी इस डर को दूर कैसे करें?
दूर करने का तरीका है अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ।
और ये कैसे होगा भैजी?
इसके लिए उन्हें ऐसी महिलाओं से मिलना चाहिए जो कामकाजी हैं, काम कर रही हैं, ताकि उन्हें देखकर उनका खुद पर भरोसा मजबूत हो सके। दूसरी बात, जब उन्हें काम करना है तो ऐसे काम को चुनें जिस पर उन्हें भरोसा हो कि वो उसे आसानी से कर सकती हैं।
बिल्कुल भैजी।
हो सके तो उसके लिए प्रशिक्षण भी ले ले, ताकि आप काम की बारीकियों को समझ सकें और लोग आपके काम को पसंद करें।
तो गांव में रहने वाली महिलाओं से हमारा विशेष रूप से अनुरोध है कि वो हमारे भैजी की सलाह को मानें और खुद पर विश्वास करें
और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ें।
अपना दिल की बात परे बो दूते माजी आछरी डांडियो माकी परे बो दूते माजी आछरी डांडियो माकी सोचते थई मेरा के मायना बोलिया सोचते थई मेरा के मायना बोलिया
अब वक्त हो चला है काम की बात का।
और आज हम आपको बताएंगे उन संस्थाओं के बारे में जो खास तौर से उन महिलाओं के लिए काम कर रही हैं जो अपने जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती हैं।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही संस्थाओं में एक अहम नाम है हाई फीड का, जो कि उत्तराखंड के रानी चौरी में स्थित है।
दोस्तों, यहाँ महिलाओं को नर्सरी तैयार करने, पौधारोपण और फिर तैयार उत्पादों यानी कि पौधों को बाजार में बेचने तक का प्रशिक्षण दिया जाता है।
तो क्या कहती हैं महिला मित्रों, यहाँ पर संपर्क करना चाहती हैं? अगर हाँ तो जल्दी से नोट कीजिए यहाँ के फोन नंबर्स। नंबर्स हैं 01376251141 और 2521149।
श्रोताओं, एक और खास बात, ये संस्थान आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह तैयार करने में भी मदद करता है, जिसके जरिए आपको अपना काम शुरू करने के वित्तीय संकट से भी नहीं जूझना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अपने व्यवसायिक विचारों पर आपस में विचार विमर्श भी कर सकती हैं, जैसे किन बातों से व्यवसाय को लाभ हो सकता है और किन बातों से व्यवसाय को नुकसान झेलना पड़ सकता है।
और अब बारी आती है कुमाऊं ग्रामीण उद्योग की।
जी हाँ श्रोताओं, ये नैनीताल में स्थित है और इसके काम को अंजाम देते हैं कुमाऊं के स्थानीय कारीगर।
और इस उद्योग में तैयार होते हैं रचनात्मक और खूबसूरत डिजाइनों वाली शालें, चद्दरें और टोपियों जैसे उत्पाद।
और ये उद्योग कारीगरों को इन पर डिजाइन करने के लिए प्रति इकाई के हिसाब से भुगतान करते हैं।
दोस्तों, यहाँ का फोन नंबर है 0594228684। इसी काम से जुड़ी हुई एक और संस्था है विमेंस इंडिया ट्रस्ट यानी WIT।
दोस्तों, महिलाओं के लिए बनाया गया ये संघ मुंबई के माहिम में स्थित है।
इस संस्था से जुड़कर महिलाएं कई प्रकार के अलग अलग कोर्सेज कर सकती हैं, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, नर्सिंग, केटरिंग, बालवाड़ी और टीचर ट्रेनिंग आदि।
दोस्तों, साथ ही साथ ये संघ महिलाओं को कुछ ऐसे काम भी उपलब्ध करवाता है जिन्हें वो घर पर ले जाकर कर सकती हैं।
और ये संघ आपके बनाए गए उत्पादों को देश के अलग अलग रिटेल आउटलेट्स में भेजने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ का फोन नंबर भी बता दूं। तो ठीक है, नोट कीजिए 02224462506।
और दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आग यानी एड्स अवेयरनेस ग्रुप के बारे में।
श्रोताओं, आग एक ऐसी संस्था है जो लड़के और लड़कियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि उन्हें जीविका कमाने के अच्छे अवसर मिल सके।
इतना ही नहीं, लड़कियों और महिलाओं को ये संस्था सिलाई और कढ़ाई का भी प्रशिक्षण देती है।
इसका ऑफिस दिल्ली में है, जहाँ के नंबर्स हैं 01126187953 और 26187954।
तो दोस्तों, कैसी लगी आज की काम की बात? वैसे अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो सोचिए मत, फौरन अपना मोबाइल फोन उठाइए, हमें तुरंत अपना सवाल SMS कर दीजिए। हम आपके सवाल का और आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। हमारा नंबर है 9197176723। तो दोस्तों, ये तो थी काम की बात। और दोस्तों, अब बारी आती है आपकी चिट्ठी की।
नरेन, ये सेगमेंट आते ही हमारे प्रवासी श्रोताओं के चेहरे पर एक चमक और मुस्कुराहट आ जाती है।
भाई, ये मुस्कान आनी जरूरी भी है, आखिर यही तो वो सेगमेंट है जिसमें उन्हें एक आकर्षक इनाम जीतने का मौका मिलता है, वो भी अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभव के जरिए। तो अंजलि, कौन है आज के खुशकिस्मत विजेता?
नरेन, हमारे आज के विजेता हैं बुराड़ी दिल्ली के MS नेगी जी। ये लिखते हैं कि आज से 14 साल पहले जब मैं गांव में था, घर वाले मुझे घर पर ही रखना चाहते थे, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी और अपने जीजा जी के साथ दिल्ली आ गया। यहाँ आकर एक के बाद एक कई नौकरियाँ मुझे बदलनी पड़ी, लेकिन कहीं भी बात बनी नहीं। इसी बीच मेरी शादी भी हो गई। फिर एक दिन किताबों की एक कंपनी में लग गया। जब मैं वहाँ लगा था तो चपरासी की नौकरी पर 43 रुपए रोज पर लगा था। तब मैं 10वीं फेल था, पर इस कंपनी में आकर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया। मैंने कंपनी में काम करते हुए ही दिल्ली से पहले 10वीं और फिर 12वीं की और कंप्यूटर में 1 साल का कोर्स भी किया। उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। आज उसी कंपनी में मैं पब्लिसिटी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ और बहुत खुश हूँ। पर एक बात का दुख भी मुझे सताता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं 2 बार कोशिश भी कर चुका हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ और मेरे बच्चे भी मेरे साथ दिल्ली में ही रहते हैं। लिखने का तो बहुत कुछ है, पर अब अगले पत्र व्यवहार में लिखूंगा। नेगी जी, हमें आपके अगले पत्र का इंतजार रहेगा। और नरेन, क्योंकि नेगी जी खुद उत्तराखंड से हैं, इसलिए उन्होंने उत्तराखंड के अपने सभी प्रवासी भाइयों के लिए एक संदेश भी भेजा है। ये लिखते हैं कि मेरा सभी भाइयों से एक ही अनुरोध है कि उत्तराखंड के वासियों, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, मगर अपनी उत्तराखंड की देव भूमि को कभी मत भूलिएगा।
बड़ी ही अच्छी बात कही नेगी जी आपने। आपके प्रवास के अनुभव को हमारे साथ बांटने के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों, नेगी जी की तरह आप भी जीत सकते हैं ऐसा ही आकर्षक इनाम, लेकिन इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभव को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
आप हमें अपनी चिट्ठियाँ इस पते पर भेज सकते हैं, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com। और अब बारी आती है आज के संदेशों की,
तो आइए सुनते हैं आज हमारे पास कौन कौन से संदेश हैं जो हमारे दोस्तों ने अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजे हैं।
मेरा नाम देवीलाल भारती है, मैं ग्राम बनस का मूल निवासी हूँ और मेरे जेठू जी फरीदाबाद में रहते हैं, LPG गैस प्लांट में काम करते हैं वो। आजकल उनका संपर्क फोन से भी नहीं हो रहा है। आजकल घर में जो है लवाई मनाई का काम भी कम हो गया है और हल लगाने की तैयारी है। और आपके घर में भी ठीक ठाक है जेठू जी, मेरी आवाज़ आप लोग अगर सुन रहे होंगे तो सभी भांजाओं को भी मेरा प्यार भरा धन्यवाद।
मेरे नाम शिवराज लाल, ग्राम बनस और पोस्ट ऑफिस मचकंडी जिला रुद्रप्रयाग। मैं एक संदेश देना चाहना छू अपर जो अरुणाचल छन को हमारा जोड़ जी गौर फंड जो चीज लेवे मैंने खत्म हुई और हॉल आना शुरू होने वाले काकड़ी मुंगरी भी जो चीज खत्म होने वाले छन। मैं तो यन बन चाहना छू कि जब तुम घर आला तो हम तो जरूर मिला और आज का लेखो मौसम को आनंद मिला।
अनसुयालाल, ग्राम भणाज पोस्ट ऑफिस मचकंडी जिला रुद्रप्रयाग और मेरे शव रमेश से पोटा साहेब में दवाई कंपनी में काम कर दो। तेते मैं संदेश भेजना चाहूँ कि लवे मन भी अब खत्म होने वाले छे और तेते बोलूँ मैं कि बाबा दी माँ जरूर घर आइए। पहले तो ये बटाए मैं तेरे बाबा दी माँ जरूर घर आइए।
तो दोस्तों, ये तो थे आज के संदेश।
और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम पता हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 9197176782।
इसके अलावा अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कुछ खास जानकारियां हैं तो वो आप हमें चिट्ठियों के जरिए भेज सकते हैं। हम उन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे ताकि हमारे बाकी प्रवासी श्रोता भी उनका लाभ उठा सकें।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना क्लब तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आप पहले से ही किसी प्रवासी क्लब से जुड़े हुए हैं तो उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की जानकारियां भी हमें भेज सकते हैं।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज भणज का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ दोस्तों, हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभव के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
और पता है कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।